प्रातः क्लास चल रहा था 28/4/1966 गुरुवार को पांचवें पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी वैराग्य का अर्थ ही है देश हित देह के सर्व संबंधों को भूल करके अपन को नंगा समझ करके चलना क्योंकि इस दुनिया में नंगे ही आए थे और नंगे ही जाना है। कुछ भी यहाँ से लेकर के नहीं जाना है, पाप भी लेकर के नहीं जाना है और पुण्य भी लेकर के नहीं जाना है। तो यही जब आए हैं तो ये पुरानी दुनिया खलास हो जाने वाली है और अब हम बाबा के पास जाने वाले हैं। फिर हम नई दुनिया में आने वाले हैं। तो सारा दिन ये मेहनत और तो बाबा कोई दूसरी मेहनत तो नहीं बताते हैं। ये खेल है, सो तुमको समझाता हूँ। ये क्या हाल होता है, फिर मैं कैसे आता हूँ। चलो कौन आएगा, रिकॉर्ड चला, धरती को आकाश पुकारे, कौन सी धरती और पुकारने वाला कौन सा आकाश। आकाश है सबसे ऊंचा, वास्तव में आकाश के समान ऊंचते ऊंच बाप ही है। जो धरणी रूपी माता को पुकारता है इसलिए पुकारता है सतयुग की धरणी बनाने के लिए। जो प्रेम का युग है और ये कलिदी दुनिया है, फिर विप्रेम विपरीत प्रेम यानी दुश्मनी की दुनिया। और दुश्मनी किसको कहा जाता है, स्त्री कन्या और बालक आपस में प्रेम करने के लिए मिलते हैं, परंतु प्रेम नहीं करते हैं। वो तो एक दो की सत्यानाश कर देते हैं। कह जैसे पति तो पड़ते हैं, चीची हो पड़ते हैं, कि पतन होना, पतित होना, ये तो आत्मा का सत्यानाश करना हुआ ना, ये प्रेम तो नहीं हुआ ना। एक दो के ऊपर काम कटारी चलाना, एक दो को जहर पिलाना, जहर पी करके आता, या कोई भी आदमी की क्या हालत हो जाती है। जैसे अज्ञान नींद में सो जाते हैं, अब ये अज्ञान नींद में सो जाना कोई प्रेम की बात हुई? सतयुग में तो ऐसा कोई भी नहीं करते हैं। तो वहां बहुत प्रेम होता है, समझाते कि अभी से कलयुग की दुनिया में कोई प्रेम नहीं है। ये शादी करना एक दो में, ये वो प्रेम नहीं है जो सच्ची दुनिया होता है। ये तो एक दो की बर्बादी करते हैं। इसलिए अभी से कलयुग की दुनिया में शादी करना न शादी करना ही बेहतर। अगर करते भी हैं तो बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह हो करके दिखलाओ, भीष्म पितामह बन के दिखलावेंगे तो बाप उनको संसार में दिखलावेंगे। कहा भी जाता है फादर शो सन्स, तुम कहते हो हम नहीं रह सकते हैं, शादी करने के बाद ब्रह्मचारी नहीं रह सकते, वाह उनको मिलती है, प्राप्ति होती है। जिनको सारी दुनिया के सामने इतने ऊंचे मान मर्तव्य की प्राप्ति होती है, वो क्यों नहीं पवित्र रह सकते? क्योंकि ऐसों के लिए प्राप्ति बहुत है। तुम्हारी इस शादी बर्बादी में कोई प्राप्ति तो है ही नहीं। वो उन सन्यासियों को बोलो तुम्हारा हठ योग है और हमारा ये राजयोग है। इस राजयोग से जो भगवान बाप हमको सिखाते हैं उससे हमको राजाई मिलती है। राजाई स्वाधीनता को कहा जाता है। राजा स्वाधीन होते हैं ना, अपने राज्य में राजा कोई के अधीन तो नहीं होता है ना। तो हमको राजयोग से राजा ही मिलती है। इस एक अंतिम जन्म में पवित्र रहने से हमको ऐसी प्राप्ति होती है। तुम कितना भी वहां जा कर रहे हो बोलो उन सन्यासियों से, कहां जा कर रहे हो, जंगल में दूरवाज खुशवाज होकर के रहो, तुमको धूल भी प्राप्ति नहीं होने वाली, राजाई की तो बात ही छोड़ो। अरे राजाई की परछाई भी नहीं मिलती। हाँ ये बात जरूर है कि सन्यासियों की मान्यता होती है, क्योंकि बहुतों के गुरु बनते हैं। आमदनी बहुत होती है और शरीर निर्वाह भी होता है। किन की बात बताई है, सन्यासियों की बात बताई। सिर्फ बाहर के दुनिया के सन्यासियों की बात बताई, ये संगम युग में बाप आकर ब्रह्मा द्वारा जो ब्राह्मण सृष्टि रचते हैं, नौकुरी के ब्राह्मण रचे जाते हैं, उन सब ब्राह्मणों की बात बताई। है सब की बात बताई नहीं, अल्लाह बल्दीन गाया हुआ है, अल्लाह ऊंचते ऊंच को कहा जाता है। ऊंचते ऊंच बाप आकर के ऊंचते ऊंच धर्म की, ऊंचते ऊंच कुल की स्थापना करते हैं। जो ऊंचते ऊंच कुल के कुलीन ब्राह्मण हैं, वो कौन से वंश के हैं, सूर्य वंश के हैं। सूर्य को जानने और पहचानने वाले हैं। ज्ञान सूर्य बाप से राजयोग सीखते हैं। बाकी जो भी ब्राह्मण हैं और नीची नीची कुरियों वाले, वो न राजयोग सिखाने वाले बाप को जानते हैं और न राजयोग सीखते हैं। हाँ राजयोग के नाम पर उनकी आमदनी बहुत होती है। बहुत अच्छा शरीर निर्वाह होता है। सतयुग है सुख के संबंध की दुनिया, कलयुग है दुख के संबंध की दुनिया। तो जरूर सुख के बाद दुख की दुनिया अपने टाइम पर चक्कर लगाएगी। तो सतयुग में सुख का संबंध, कलयुग में दुख का संबंध बंधन। तो ये दुख का बंधन है, जबकि रावण राज्य शुरू होता है। और राम राज्य का अंत हो जाता है। बाबा जब आते हैं तो रावण से छुटकारा दिलाते हैं, फिर है सुख का संबंध। अब ये याद भी बहुत बच्चियां भूल जाती हैं। अगर ये भी याद रहे कि अब हम सुख के संबंध में जाते हैं, इस दुनिया के जो भी संबंध हैं, देह के संबंध, वो सब दुख के बंधन हैं, संबंध नहीं है। तो हम सतयुगी सुखों के संबंध में जाते हैं तो खुशी हो गई, और फिर याद भी करेंगे, क्योंकि सुख देने वाले का नाम सुखदेव रखा है। सुखदेव की याद जरूर आएगी, याद करना पड़े तो भी देखो बहुत मुश्किल है। ये माया बड़ी दुस्तर है, बात मत पूछो। कितने हमसे पाप होते हैं, बाबा बोलते हैं पाप न करो, तो जोर कर भी बहुत माया पाप कराती है। अज्ञान काल में जो पाप कभी नहीं किए होंगे तो भी ज्ञान काल में कर लेते हैं। अच्छा, सभी सेंटर्स के ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी सब सेबल बच्चों को आज गुरुवार के दिन बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ये 1466 का छूटा हुआ प्रातः क्लास, बुधवार को चौथे पेज के मध्यार्ध में बात चल रही थी कोर्ट में जज ने कोई को बोला गधा, तो फिर वो बोलता है साहब हम गधा नहीं, क्योंकि हम गधा तो तुम भी गधा। अगर तुम हमको मनुष्य कहेंगे तो तुम भी मनुष्य है। तो देखो कोई कोई अक्षर है ऐसे युक्ति से जो कोई को भी कहो तो लग जावेंगे। अब ये तो कंप्लेंट है यहाँ कि सभी जो भी मनुष्य मात्र है, साधु संत महात्मा, ये कंटेम्प्ट ऑफ किसकी है? ये कोर्ट, ये गवर्नमेंट की। देखो ये गवर्नमेंट है ना ऊपर में, यानी ये ऊंचे ते ऊंचे गॉड फादरली गवर्नमेंट है। देखो उनको इंसल्ट करते हैं ना, सभी इंसल्ट करते हैं। तो देखो आज सभी कहते हैं एक कुत्ते का बच्चा, ए उल्लू का बच्चा, ये किसकी इंसल्ट करते हैं? हाईएस्ट, क्योंकि दंड भी खाते हैं। तो बच्ची ये हाईएस्ट गवर्नमेंट है ना, क्योंकि इस गवर्नमेंट के साथ धर्मराज भी तो है ना। तो ये तो गवर्नमेंट है, गॉडफादरली गवर्नमेंट, जिसके पास में धर्मराज भी है। तो देखो कंटेम्प्ट करते हैं गॉडफादर की, उनको कहते हैं तुम कुत्ते का बच्चा, उल्लू का बच्चा, तुम पत्थर पत्थर में हो, ठिक्कर भित्तर में हो, कण कण में हो। तो देखो ये कंटेम्प्ट करते हैं ना, तो ऐसी कंटेम्प्ट करने से क्या होता है? उनको कहा ही जाता है पापात्मा, क्योंकि बाप को गाली देते हैं, बाप को क्या क्या कहते रहते हैं। तो ये बाप आकर के समझाते हैं, परंतु मनुष्य नहीं समझते। ये बाप ने आकर के कहा कि तुम मंदिर में शिवालय में रहने वाले तो आकर के वैश्यारे में रह पड़े हो, इसलिए तुम जैसे बंदर बन जाते हो। सूरत है तुम्हारी ये शिकल, शिकल तुम्हारी मनुष्य की है, सीरत तुम्हारी बंदर की है, इसलिए बंदर और मनुष्य है। अक्सर करके बंदरों को बहुत पकड़ करके ले जाते हैं बिलायत में, उनका ऑपरेशन करना, ये करना, वो करना, ये सब कुछ सीखने के लिए बंदरों को बहुत ले जाते हैं, क्योंकि बंदर की शिकल मनुष्य से जैसे, और फिर शास्त्रों में भी रामायण में बहुत लिखा है बंदरों के लिए। देखो बंदरों की पूजा भी होती है, बंदरों की पूजा, अब ये तो गॉड फादर की पूजा होती है ना बच्चे, तो ये भी बंदरों का जो हेड है हनुमान, ये उनको पूजा करते हैं। तो ऐसे मनुष्यों को क्या कहेंगे, बंदर संप्रदाय ही कहेंगे ना। जो बंदरों की पूजा करते हैं तो वो बंदर संप्रदाय हुए। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताई संप्रदाय होना चाहिए ना देवताएं। परंतु देखो देवताएं नहीं है, भले देवताओं की पूजा करते हैं परंतु देवता तो नहीं है, क्योंकि उनमें वो देवताओं जैसे दैवी गुण नहीं है, इसलिए उनको देवता नहीं कहा जाता। जो क्राइस्ट के हैं तो बरोबर वो जानते हैं कि हम क्रिश्चियन लोग हैं, तो क्राइस्ट को पूजते हैं। ये जो भारतवासी हैं, इन देवताओं को पूजते तो हैं, जरूर पूजते हैं, परंतु अपन को देवी देवता नहीं कह सकते हैं। यथार्थ रीत से कह ही नहीं सकते। यूं तो बहुतों का नाम होता है, फलानी देवी, फलाना देवता, समझा ना। ऐसे भी दुनिया में बहुत नाम है, पर वो देवी देवता है तो नहीं ना। तो बच्चे वो तो कहते हैं जाकर के हम पापी हैं, कपटी हैं, नीचे हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप ही तरह सफर हुई। अरे अभी ये आत्मा कहती किसको है, इनको बाबा तो कहना चाहिए ना, भाई को तो नहीं कहना चाहिए। आप ही तरह सफर हुई, तो ये बाबा को भूल करके भाइयों की पिछाड़ी जाकर के लगे। ये सभी देवताएं हैं, मनुष्य हैं, तो सभी बृहदस्थ हैं ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी तो क्रिएशन है ना, क्रिएटर तो नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी आपस में ब्रदर्स हैं। किसकी संतान है, एक परमपिता परमात्मा की संतान। तो देखो जो क्रिएशन है ब्रह्मा विष्णु शंकर है, उनसे कुछ मिलना है क्या। चौदह 966 की वाणी का पांचवा पेज, इंद्रमूर्ति की कितने भी पूजा करो, इनको कितना भी मत्था मारो, इनसे कुछ भी मिलने का नहीं है। किनसे, ब्रह्मा विष्णु शंकर से। देखो पूजा तो करते आते हैं ना, किनकी, विष्णु की, शंकर की, और अजमेर में ब्रह्मा की भी पूजा तो करते आते हैं। किसकी पूजा की, भाइयों को पूजा या बाप को पूजा, ऐसे कहेंगे ना कि भाइयों की ब्रदर्स की पूजा करते आते हैं, तो जरूर नीचे गिरते आते हैं। अभी फादर आए हुए हैं तो फादर से तो इनहेरिटेंस मिलता है ना, वर्षा मिलता है ना। देखो फादर को कोई जानते ही नहीं है, इतनी बड़ी दुनिया में फादर को कोई भी नहीं जानते। फादर कौन है देखो, कह देते हैं फादर सर्वव्यापी है, फिर फादर अखंड ज्योतिर्मय। अभी कहेंगे अखंड ज्योतिर्मय है, अरे भाई फादर का नाम क्या है? कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। अरे ये जो तुम कहते हो कि अखंड ज्योति रूप है, तो उसका कोई न कोई रूप हुआ ना, पीछे ऐसे क्यों कहते हो कि उनका कोई आकार नहीं है? तो देखो ऐसे अनेक बातें कहते रहते हैं ना, तो कोई को भी कुछ भी पता नहीं है, न साधु न संत न महात्मा, किसको भी पता नहीं रहता, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं पता रहता? सभी समय में तमो प्रधान और लामुजीव, सबको तमो प्रधान तो बनना ही है, क्योंकि इसे कलयुगी पुरानी दुनिया के आगे है ना। सभी तमो प्रधान बन, फिर जब बाप आवे तभी सतो प्रधान बनावे है। बाप जो आत्मा है, उस आत्मा में ऐसी क्या शिफ्ट है जो आत्मा आत्मा भाई भाई को सत्व प्रधान नहीं बना सकते? बाप ही सत्व प्रधान बनाते हैं। क्या खास बात है, है? क्योंकि बाप जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, इसलिए वो अनेक जन्मों की तीनों कालों की सारी बात को जानते हैं। वो सदैव सतो प्रधान है, कभी तमा तामस नहीं बनता, सदैव स्वयं स्थिति में रहता है, इसलिए वो ही तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान बना ही सकता है। तो वो आवे तभी तो सतो प्रधान बनावे। पीछे ये सतो प्रधान बनने का पाठ तो नंबर वार सब का है, परंतु आत्मा को तो प्योर जरूर बनना है। बच्ची सब तो वहां के रहने वाले, कहां के सब जो हैं, जो भी आत्माएं हैं सब वहां के रहने वाले हैं, कहां के? बाप के घर के रहने वाले हैं, तो सब बाप के साथ जाएंगे, यहां आकर के पाठ बजाते हैं। तो जानते हो कि सत्व प्रधान सतो रजोतमो वो तो होना ही है। नई से पुरानी दुनिया होनी जरूर है। तो अभी तुमको ये जानते हैं कि हम बाबा का बने हैं, बाबा वहां से आया हुआ है और हम बाबा को पुकारते हैं, बाबा आते हैं, आते हैं तो किस में आते हैं? अरे पर ये तो गाया जाता है कि बाबा ब्रह्मा द्वारा, तो ये ब्रह्मा तो है ना अपना, तो वो कहते हैं मैं ब्रह्मा के तन का आधार लेता हूँ। गाया भी जाता है एक भागीरथ, रथ है ना, कैसा रथ है? भाग्यशाली रथ। मैं उनमें सवार होकर के उस रथ में अपनी भी तो आत्मा होगी ना, बिना रथ के नहीं, बिना आत्मा के कोई रथ होता है क्या? होता है, अगर होता है तो मुर्दा होता है या भागदौड़ करने वाला रथ होता है? तो देखो उस रथ को अपनी आत्मा भी है। और कहते भी हैं भागीरथ। अच्छा फिर कहते हैं भागीरथ से गंगा आई। अरे अभी गंगा काहे की आई? गंगा कोई जटाओं से थोड़े ही आती है, है? गंगा में जो जल आता है वो बरसात से आता है या जटाओं से आता है? गंगा तो बरसात से बनती है, तो बरसात से बनती है या जटाओं से बनती है? हैं? इसका अर्थ समझना है या नहीं समझना है? क्या समझेंगे? हैं? हाँ, ज्ञान की जटाएं हैं, मनन चिंतन मंथन की जटा है। इस मनन चिंतन मंथन से जो एडवांस नॉलेज निकलती है कहाँ से निकलती है? दर से निकलती है या टांगों से निकलती है? हैं? सर से निकलती है, तो सर के अंदर ही मनन चिंतन मंथन चलता है। तो जटाएं दिखाई हुई है, तो बाप बैठ करके समझाते हैं कि देखो कितनी तमो प्रधान बुद्धि बन गई है। जो मनुष्य स्थूल जटाओं से समझ लेते हैं, क्या समझते हैं? हैं? स्थूल जटाओं से गंगा निकली या ज्ञान जटाओं की बात समझते हैं? स्थूल जटाओं की बात समझते हैं। तो बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य ये कहते हैं क्या कि ज्ञान जटाओं की बात है? और भाग्यशाली रहते की बात है? और फिर ये समझते हैं कि भागीरथ ने गंगा लाई जटाओं से, तो देखो अभी कोई जटाओं से गंगा आती है क्या? ये तो बुद्धि भी कहती है, कोई भी कहे कि ये तो बरसात बरसती है या तो पहाड़ों से पानी आता है, मीठा पानी आता है। तो ये बरसात कौन सी बरसात बरसती है? हैं? मनन चिंतन मंथन से फिर ज्ञान की बरसात बरसती है, और वो बरसात ऊंची स्टेज में मनन चिंतन मंथन से बरसती है या ऊंची स्टेज से बरसती है? ऊंची स्टेज से बरसती है। तो उन्होंने पहाड़ों से दिखाई दिए। अब पहाड़ों की बात नहीं है, ऊंची स्टेज की बात है। जैसे दिखाई देते हैं कि शंकर जी कहाँ रहते हैं? हैं? कैलाश पर्वत पर रहते हैं। अरे कैलाश पर्वत पर रहने की बात नहीं है, वो तो ऊंची स्टेज की बात है। तो समझते हैं कि पहाड़ों से गंगा निकलती है। अरे बच्चों को स्कूल में इतनी शिक्षा भी नहीं मिलती है कि भाई ये पानी कहाँ से आता है, कौन सा पानी? गंगा का पानी कहाँ से आता है? हैं? पहाड़ से आता है? हैं? पहाड़ से नहीं, ये ज्ञान गंगा की बात है। ये भी शिक्षा नहीं मिलती है बच्चों को कि बादल जाते हैं, वो सागर से पानी खींचते हैं, पहाड़ से टकराते हैं, फिर बरसात होती है। तो वो मीठा पानी ये सागर में गिरता है, और सागर खारा भी है मीठा भी है। आजकल तो साइंस की ताकत से वो लोग पानी को अलग भी कर सकते हैं दवाइयों के जोर से। जहाँ जहाँ पानी की कुछ तकलीफ होती है तो फिर वो भी तो इनमें भी तो ताकत है ना बच्ची, किन में? साइंस वालों में। और तुम साइंस के जोर वाले हो या साइलेंस के जोर वाले हो? वो लोग तो साइंस की जोर से पानी भी वो, पर वो पानी क्या निकाल सकेंगे? कहाँ ये बादल का नेचुरल पानी? देखो कितनी बरसात बरसती है, बोड़म बोड़ हो जाती है। वेद में क्या होता है? हैं? वेद में क्या होता है? अरे जोर से ज्ञान जल बरसता है तो क्या हो जाएगा? हैं? चारों ओर बाढ़ ही बाढ़ आ जाती है, नदियां बाढ़ से उफनने लग पड़ती है, तब क्या हाल होता है? पानी शुद्ध होता है या अशुद्ध हो जाता है? हैं? अशुद्ध हो जाता है। क्या मिल जाता? मिट्टी मिल जाती है। मिट्टी किसे कहा जाता है? हैं? देहाभिमान की मिट्टी मिल जाती है। कचरा मिल जाता है। कचरा किसे कहा जाता है? विकारों का कचरा मिल जाता है बाढ़ के पानी में। तो देखो कितना पानी आता है बाढ़ में, इतना पानी आता है कि बड़े बड़े शहरों को भी वो डुबा देते हैं। दिल्ली तो बड़ा शहर है ना, क्या हुआ था? हैं? मॉडल टाउन जैसे शहर को, जहाँ चार चार पांच पांच मंजिल के मकान बने हुए हैं, वहां भी एक एक दो दो मंजिल डूब गई। तो देखो कितना पानी आता है। अब ये कहां से आता है? देखो ये पानी तो सारा समंदर से आता है ना, और वेद में कहां से आता है? ज्ञान सागर से आता है। ये बादल ले जाकर के फिर आकर के बरसात करते हैं। तो अभी तो ये पानी है, इनका कोई दूसरा नाम नहीं है। अभी माने कब? हैं? बाबा कब की बात बताई? 66 की बात बताई कि अभी तो ये पानी है, ये कोई ज्ञान के बादल नहीं है, न यहाँ कोई बरसात तो इतनी ज्यादा होती है जो बोड़म बोड़ हो जाए, बाढ़ आ जाए। तो अभी की बात नहीं है तो फिर कब की बात बाबा बता रहे हैं? आगे चल करके जब ज्ञान सागर बेहद का प्रत्यक्ष होता है तब ये बातें होती हैं। तो अभी इनका कोई दूसरा नाम नहीं है। अभी नहीं कहेंगे कि कोई इंद्र बिंद्र है जो बरसात बरसाता है। क्या कहा? न इंद्र है न वीरेंद्र है, इंद्र बिंद्र कुछ भी नहीं है। और न यहाँ अभी कोई वो मनुष्य है। कहाँ की बात बताई? हैं? वो मनुष्य है। कौन सा मनुष्य? जो भागीरथ कहा जाता है। यह तो सब नेचुरल है। तो बादल वहां जाते हैं, यह है एक नेचर जो आकर के बरसात बरसाती है। अभी ये वर्षा फिर क्या है? वेद में क्या है? वो तो जड़ पानी है, जड़ बरसात है, ये क्या है वेद में? ये ज्ञान की बरसात है। चौदह नौ छियासठ की वाणी का छठा पेज। इस ज्ञान बरसात को कहा जाता है फिर ज्ञान की बरसात, नॉलेज। तो इस नॉलेज की बरसात से क्या होता है भाई? ये जो पतित दुनिया है ना, वो सारी पतित दुनिया पावन हो जाती है, बाकी यहाँ कोई पानी का कनेक्शन नहीं है पावन होने के लिए। कहीं का कनेक्शन है? है ज्ञान जल का कनेक्शन है। ये गंगा, ये यमुना, ये तो सतयुग में भी होती है। यमुना नदी में ये कृष्ण कहते हैं कि खेल पाल करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। हाँ, ऐसे कोई बात नहीं है कुछ। अरे वो तो राजा ही बच्चे हैं, ये बड़ी हिफाजत से उनको दिखाया जाता है, बहुत हिफाजत से, समझा ना, हिफाजत से रखा जाता है। किसको है? किसकी बात हुई? अरे अरे अभी बताया ना कि कृष्ण यमुना के कंठे पर खेल पाल करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मक्खन चुराते हैं। बाबा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं, ये तो राजा ही पाने वाले बच्चे हैं, उनको बड़ी हिफाजत से रखा जाता है। कि कंस की जेल में रखा जाता है, हैं? कंस की जेल से निकाल करके बड़ी हिफाजत से गुप्त रखा जाता है। क्यों? नहीं तो कंस उनको मार भी दे। तो कहां की बातें हैं? हैं? संगमयुगी कृष्ण की बातें हैं, सतयुगी कृष्ण की कोई बात नहीं है। युगाते हे कृष्ण नारायण वासुदेव, नारायण का राज्य तो सतयुग में था, सतयुग त्रेता की तो कोई हिस्ट्री नहीं है। तो देखो जो फूल होता है उस फूल को कितनी हिफाजत से रखा जाता है। वो तो फूल देखो कैसे अच्छे मीठे लगते हैं, और उन फूलों को कितना सूंघते हैं। इन कांटों को तुम सूंघेंगे क्या? तो इनको तो कहा ही जाता है कांटे, ये तो है ही दुनिया कांटों का जंगल। इस समय में फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, इसलिए देखो ये नाम रखा है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कांटों का जंगल। कांटा किसको कहा जाता है? कामी कांटा कहा जाता है, दुख देने वाले को कांटा कहा जाता है, सुख देने वाले को फूल कहा जाता है। तो इस फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स को ये जो निराकार बाप है वो आकर के गार्डन ऑफ फ्लावर्स बनाते हैं। तो उसको क्या नाम रख दिया है? है? जो फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स को गार्डन ऑफ फ्लावर्स बनाते हैं उनका क्या नाम रख दिया है? अरे बम्बई में क्या नाम रख दिया? बबूलनाथ नाम रख दिया। ये बबूल ट्री होते हैं ना, कितने बड़े बड़े कांटे होते हैं, देखो बॉम्बे में है ना तुम्हारा, कौन क्या है, हैं? किस तरह का इशारा किया है? क्या है बॉम्बे में? फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, कामी कांटों का जंगल। उसको क्या कहते हैं? और फिर वहां है बबूलनाथ। बम्बई के लिए क्या बोला? बम्बई है विनाशकारी और दिल्ली है स्थापनाकारी। स्थापना कैसे होती है? हैं? पवित्रता से स्थापना होती है और काम विकार से विनाश होता है। तो काम विकार का देवता कौन कहा जाता है? हैं? हैं? कामदेव। वो कामदेव अपने अंदर रहता है या कोई बाहर होता है? तो शंकर जी के लिए कहते हैं कामदेव को भस्म किया, तो कोई बाहर का था या अंदर भस्म किया है? और नगरी का नाम क्या रखा है? अरे उनके नाम से नाम के आगे क्या लगाते हैं? हर हर बम बम। तो उसके नाम के आधार पर नाम पड़ गया बम बम में। उन कांटों को फूल बनाते हैं, इसलिए वहां नाम पड़ गया बबूलनाथ। वास्तव में असुल बबूलनाथ। फिर बबूल भी कहा जाता है। तो बाप बैठ करके समझाते हैं वो बबूलनाथ है। कौन वो? माने कौन? जो कांटों के जंगल बॉम्बे को क्या बनाते हैं? हैं? फूलों का गार्डन बनाते हैं। ये बबूल, ये जो कांटे हैं, कौन से कांटे? काम विकार के कांटे। उनको आते हैं, उनको बैठ करके फ्लावर बनाते हैं, इसलिए उनकी महिमा हो गई है। किनकी है? बबूलनाथ की। बबूलनाथ यानी कांटों को फूल बनाने वाला नाथ, यानी परमपिता परमात्मा बाप। क्या नाम दिया? परमपिता परमात्मा। दो नाम क्यों है? परमपिता माना बड़े से बड़ा पिता, कोई धर्म पिता बड़े से बड़े नहीं है। इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट बड़े से बड़े पिता नहीं है, भले क्राइस्ट 250 करोड़ क्रिश्चियंस का बाप है, परंतु वो भी बेहद का बड़े से बड़ा बाप नहीं। उन बापों का भी बाप कौन है, हैं? जिसे वो भी मानते हैं एडम आदम। हिंदुओं में कहा जाता है आदिदेव शंकर। तो नाम रख दिया है परमपिता, माने शंकर का भी पिता है या नहीं है, हैं? उसका भी पिता है। तो वो परमपिता है जिसका दुनिया में और कोई पिता नहीं है। फिर पीछे से परमात्मा शब्द क्यों लगा दिया है? है? आत्माओं के बीच में परम पार्ट बधारे, हीरो पार्ट धारे, जो शिव की आत्मा है, आत्माओं का बाप, उसको हीरो पाटधारी कहेंगे, हैं? क्यों? वो बड़े से बड़ा पाटधारी नहीं है, हैं? जन्म मन के चक्र में नहीं आता, नहीं। जो हीरो पाटधारी होता है वो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाला होता है रंगमंच पर, या थोड़ा सा पार्ट बजा के चला जाता है, ऑलराउंड पार्टधारी होता है। इसका मतलब है परमपिता कोई अलग आत्मा है, और जो परमात्मा शब्द जुड़ा हुआ है वो कोई अलग आत्मा है। जैसे कहते हैं शिव शंकर है, तो एक ही है दोनों या अलग अलग है? अलग अलग आत्मा है। हाँ, जो कंट्रोलर है, रचयिता है, वो पहले और रचना बाद। तो परमपिता जिसको कहा जाता है वो आत्माओं का बाप है, हीरो पाटधारी आत्मा का भी बाप है, और उसके साथ शब्द लगा हुआ है परमात्मा। परमात्मा अर्थात आत्माओं के बीच में परम पार्ट बजाने वाली आत्मा, कौन? हीरो पार्टधारी। ये परमपिता के साथ परमात्मा लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि परमपिता जो है वो निराकार है, और वो निराकार साकार के बगैर संसार में प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तो वो बाप है, बाबा बाबा। अभी तो तुम बच्चों को बिल्कुल अच्छी तरह से पक्का होना चाहिए बाबा क्या है। बाबा से तो बहुत लव होना चाहिए, क्योंकि वो बाबा तो तुमको गटर में डालते हैं, और ये बाबा तो आपको तुमको एकदम गटर से निकालते हैं, और 21 जन्म के लिए निकालते हैं। ओम शांति।